রঙ্গ চাঁদ পরা নহমার একে লাগো রঙ্গ চাঁদ পরা নহমার কি কহিব সত সত তুয়া অবতার কি কহিব সত সত তুয়া অবতার বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারি শিব শুক নারদ লইয়া জনচারি শিব শুক নারদ লইয়া জনচারি কি কহিব সত সত তুয়া অবতার কি কহিব সত সত তুয়া অবতার হেতু বন্ধ কইলা তুমি রাম অবতারে সেতু বন্ধ কইলা তুমি রাম অবতারে এবে সে তোমার যশ ভুষি বে সংসারে এবে সে তোমার যশ ঘুষি বে সংসারে কি কহিব সত সত তুয়া অবতার কি কহিব সত সত তুয়া অবতার কলি যুগে কীর্তন করিলাস তু বন্ধ কলি যুগে কীর্তন করিলাস তু বন্ধ সুখে পার হয়ুক যত পঙ্গু জড় অন্ধ সুখে পার হয়ুক যত পঙ্গু জড়ান্ধ কি কহিব সত সত তুয়া অবতার কি কহিব সত সত তুয়া অবতার কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী গোরা গুণ মাতিল ভুবন দশচারী গোরা গুণে মাতিল ভুবন দশচারী কি কহিব সত সত তুয়া অবতার কি কহিব সত তুয়া অবতার না জানিয়ে গপ তপ বেদের বিচার না জানিয়ে জপ তপ বেদের বিচার পায়ে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার কয়ে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার কি কইব সাতা সাতা তুয়া অবতার কি কইব সাতা সাতা তুয়া অবতার জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গন্ধর্বধারী জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রাদি জয় জয় নিত্য সোনক পরিপাদ্র স্তোত্র সদা শ্রী শ্রীমদেশ ভক্তন্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ মহারাজ কি জয় জয় নিত্র স্মরণ পরিপাদ্র স্তোত্র সদা শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সুরেশ ঠাকুর শ্রী প্রভুপাদ কি জয় জনান্ত করি বৈশ্ববৃন্দ কি জয় নমাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি জয় শুদ্ধ বরা যাদবী কি জয় বরাদেব কি জয় জয় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি নাম শ্রেষ্ঠ মনোমপি শচিপুত্র মাত্র স্বরূপং রূপং কৃষ্ণগ্রজং মরুপরিং মাথুরিং গোষ্ঠবাতিম রাধা কুন্দ গিরিবর মোহ রাধিকা মাধবাসাং প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পরিচিত কৃপায়াং শ্রীগুরুং তং নতো যস্মি বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পৈতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ভক্তা বিহীনা অপরাধ লক্ষ্যে ক্ষিপ্রাদি কমাদি তরঙ্গ মধ্যে কৃপামহিতাং শরণং প্রপন্নে বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দাম বৃন্দে নমস্তে চরণারবিন্দাম আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাব দিব্য ছবি সুন্দরায় তস্মৈ মহাপ্রেম রস প্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে সুখ নিবিদচেতা সদ্বুদ্ধ সন্নভাব অপজিত রুচিলীলাকৃষ্ট সারস্তদিয়ম বেতনুত কৃপাঞ্জস্তদীপং পুরাণং তমখিল ব্রিজিঙ্গনং ব্যসসোনু নতোয়স্মি ভবে ভবে যথা ভক্তিপাদস্তব জায়তে তথা পুরুষ দেবেশ নাথ স্তনজত প্রভু নাম সংকীর্তনং যস্য সর্বপাপ প্রণাশনম প্রণাম দুঃখ সমনস্তু নমামি হরি পরম ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণং নমস্কৃতং নরাঞ্চৈব নরোত্তমাম দেবীং সরস্বতীং ব্যাসাম ততো জয়মুদীরয়েত নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবায়াম ভাগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নষ্টকি শ্রীমদ ভাগবতম অষ্টম স্কন্ধ চব্বিশ অধ্যায় শ্লোক নম্বর একশো সিক্সটি ওয়ান প্রলয় পয়সি ধাতু সুপ্ত শক্তি মুখেভ্য শ্রুতিগণাম অপনীতাম প্রত্যুপাদত্ত হত্যা দ্বিতীয়াম অকথয়ত ব্রহ্মা সত্যব্রতানাম তাম আহাম অখিল হেতুম জিহ্নামিনাম নত অস্মি প্রলয়পয়সি ধাতু সুপ্ত শক্তির্মুখেভ্যাম শ্রুতিগণমপনীতাং প্রত্যুপাদত্ত হত্যা দ্বিতীয়াম কথয়ত যো ব্রহ্মা সত্যবাত ব্রতানাং তমহমখিল হেতুং జిహ్నామి నమనతోస్మి ప్రళయాపయ సిధాతు సూక్త శక్తిర్ముఖిభ్యో శృతిగాన ఉపనీతా ప్రత్యుపాదత్వహుత దీతిజమాకథయద్జో బ్రహ్మాసక్తవ్రతానాం తమహామఖిల హేతుం జిహ్నామినంగ్నుతోయస్మి ప్రళయాపయ సిధాతు సూక్త శక్తిర్ముఖిభ్యో శృతిగాన ఉపనీతాం ప్రత్యుపాదత్వహుత దితిజమకథయద్జో బ్రహ్మసత్యవ్రతానాం తమః అఖిల హేతుం జిహ్నామి నమనతోస్మి బలియా प्रलयापयसी बाढ़ के जल में धातु ब्रह्मा से सुप्त शक्ति जो नींद के कारण निष्क्रिय था मुखेभ्य मुँह से श्रुतिगणम वैदिक अभिलेख अपनिताम चुराए गए। जय श्री श्री गुरु गौरांग बंधु बिहारी जगन्नाथ बलभद्र श्री। प्रत्युपादत्त वापस दे दिया हत्ता मारकर दीपिजम महान असुर को अकथयत बातलाया जो ब्रह्मा वैदिक ज्ञान सत्यव्रता नाम सत्यव्रत तथा महर्षि के प्रकाश हेतु तम उसको अहम में अखिल हेतु समस्त कारण के कारण जिन्हमीनाम बड़ी मछली का बहाना प्रकट करके प्रकट होने वाला न तो अस्मी मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने उस विशाल मछली का रूप धारण किया, जिसने ब्रह्मा को निद्रा से जगने पर उन्हें वैदिक साहित्य वापस ला कर दिया और राजा सत्यव्रत तथा महर्षि को वैदिक साहित्य का सार कहा समझाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वह भगवान विष्णु के मत्स्यावतार से सत्यव्रत की भेंट की सारांश है। भगवान विष्णु का उद्देश्य हयग्रीव असुर से सारे वेद वापस लेकर ब्रह्मा जी को सौंपना था। संयोगवश भगवान ने अपने अहित कृपा के कारण सत्यव्रत से बात की। सत्यव्रता नाम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सूचित करता है कि जो लोग सत्यव्रत के स्तर पर है वह भगवान द्वारा प्रदत्त वेदों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो भी बोलते हैं वह वेद मान लिया जाता है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है वेदांत क्रीद वेदविद। भगवान सारे वैदिक ज्ञान के संग्रह करता है और वेदों का तात्पर्य को जानते हैं। अतः जो कोई भगवान कृष्ण से या भगवद गीता यथारूप से ज्ञान ग्रहण करता है वो वेदों के प्रयोजन को जानता है। वेदेश्च सर्वरहमेव वेद्यः। कोई वेदवादरता से अर्थात जो वेद को पढ़कर उसका दूसरा अर्थ लगाते हैं वैदिक ज्ञान नहीं समझ सकता। वेदों को तो भगवान से जानना होता है। भगवान तथा आचार्य की कृपा से वह टीका आज पूर्वाजी जी लिख रहे हैं। 1 सितंबर 1976 को राधाष्टमी का दिन हमारे नया दिल्ली केंद्र में समाप्त हुई। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तादेर चरण से भक्त से निवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। मैं अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश से श्रीमद भागवत को अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और उनकी कृपा से अनुवाद कार्य क्रमशः प्रगति पर है। यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों जो कृष्ण भवनामृत आंदोलन से सम्मिलित हुई है मेरी पर्याप्त सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार मैं अपने प्रयाण के पूर्व इस महान कार्य को समाप्त करने के लिए आसान्वित हूँ। श्री गुरु तथा गौरांग की जय हो। इस प्रकार श्रीमद भागवत के अष्टम स्कंध के अंतर्गत भगवान मत्स्यावतार शीर्षक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। सुखदेव गोस्वामी मत्स्यावतार का लीला कहने के बाद उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो कृपा विलास है, साधारण तो जीवे से भगवान बात नहीं करते हैं। सत्यव्रता नाम जिसका व्रत सदा सर्वदा सत्य पर आधारित है। भगवान सत्य है। दशम स्कंद में गर्भस्तुति में देवता लोग भगवान का सत्य व्रत कर पूरा दो लाइन में स्तव किया। ये सत्य व्रत राजा अकबर प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान प्रदान किया। वेदों का ज्ञान क्या है? चतुश्री भागवत जो ब्रह्मा को प्रदान किया था वही प्रदान किया उन्होंने। और उन्होंने महाराज सत्यव्रत को क्या करना है भावी के लिए सब कुछ बताया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति सत्यव्रत राजा का स्तर पर आते हैं तो भगवान उनसे वार्ता करते हैं, बात करते हैं। तो हमारे लिए साक्षात बात करने वाला कौन है? गुरु महाराज। साक्षात रीते न समस्त शास्त्री। आचार्य मांग बिजानिया। भगवान से बात करे चाहे ना करे, संभव हो चाहे ना हो, लेकिन गुरु महाराज से हम अपना बात कर सकते हैं। और गुरु महाराज वो वार्ता को भगवान के सामने रखते हैं और शिष्यों को उपदेश देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सब समय हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव ने पूरा भागवत रचना करने के बाद उनका अनुवाद किया। उसी अनुरूप चैतन्य चरितामृत ग्रंथों में भी आदि लीला मध्य लीला और अंत लीला और लीला का अंत में उस पूरा लीला का उन्होंने परिचय प्रदान किया, अनुवाद किया। अनुवाद करने से क्या होता है? व्यक्ति को उस विषय में जो भूल चुका था वो उसका शरण पथ में आगत हो जाता है। इसलिए यहां पर प्रय पयसी जले जो भगवान स्थितवान से वेदम विहित बहित तरिक्त मखेदम केशवधीत मीन शरीर जय जगदीश हरि। जो गीत गोविंद रचना किए हैं क्यों किया? और सबसे पहले दशावतार को क्यों डाला? जयदेव गोस्वामी, दशावतार डालने का अर्थ क्या है? मानुष के भ्रम में ना रहे चनाइए कि ये जो जितना सारे अवतार है ये सब अलग वस्तु है। उन्होंने क्या कहा? केशव धीत। जिस केशव का लीला हम गीत गोविंद में वर्णन करने जा रहे हैं वही गीत गोविंद में केशव समस्त अवतार का मूलभूत वस्तु है। लीला कथा रसमंत रेणम। जब तक व्यक्ति भगवान का लीला कथा का श्रवण नहीं करता है तब तक इस संसार सिंधु मति दुष्ट राणांग इस संसार सिंधु का पार नहीं जा सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण जो पराग परतत्व होता है पर बुह वैभव अंतरजामी अर्चा पंचधा विभक्त लास्ट में षष्ठ गुरु इस परमे पर परतर और परतम उस परतम तत्व का सर्वश्रेष्ठ जो ब्रजनंदन श्री कृष्ण है उनका लीला कथा नहीं सुनाया उनको। क्यों? क्योंकि एक आचार्य जानते हैं हरे कृष्णा माँ बाप का पहला कर्तव्य बनता है जो बच्चा जो मंदिर में लाते हैं उनको संभाल के रखने का। हमारे स्कूल में इससे तीन चार साल पहले रूल निकला गया था ये पेरेंट्स को व कॉन्ग्रीगेशन डिवोट को एक ज्ञान देना चाहिए जो आप लोग जो अपना संतान को लाओगे तो संतान का देखभाल करने का आपका है कि मंदिर का डिवोटी का है। ये चार साल पहले आरजीबी में मीटिंग हुआ था उस मीटिंग का सारांश है। आशा करता हूँ आप लोग भी इसका फॉलो करोगे तो मंदिर अच्छा रहेगा। ये जो परतत्व का ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जैसा अभिशप्त हुआ भगवान का कृपा प्राप्त होने के बावजूद भी जैसा किसने वैराग्य लेकर के मंदिर आ जाते हैं और उस वैराग्य का उन्होंने अपना दो चार दिन तो ठीक है, उन्होंने क्या करता है दुनिया भर का बुक लेकर के पढ़ना कृष्ण लीला शुरू करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के द्वारा समझाया, क्या समझाया, ये सबसे पहले वैराग्य उत्पादन करने के लिए श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद से शुरू करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज को डायरेक्ट कृष्ण लीला नहीं सुनाया, क्योंकि परीक्षित महाराज हस्तिनापुर का राजा था। इससे पहले जो प्रियव्रत इत्यादि जो महान महाराजा पृथ्वी महाराज प्रियव्रत जो अपना सब बड़ा बड़ा राजा लोग पूरा ससागर आए भूमंडल का राजत्व करते थे, फिर भी लोग क्या किया इसको तुच्छ समझ करके संसार त्याग करके चला गया। भक्तिविनोद ठाकुर इसका समझाते हैं कि सदा सर्वदा गृहवत धर्म में नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को वैराग्य अवलंबन करना एकांत आवश्यक है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अपना अंतिम समय में कोपिन और बहिर्वास धारण किए थे। आप लोग देखोगे कोलकाता भक्ति कुटी में उन्होंने बाबाजी वेश स्वीकार किए थे। तो हर व्यक्ति को इस आशय पर चलना चाहिए कि हमें भी एक दिन इस बाबाजी वेश को स्वीकार करना चाहिए, भक्तों ठाकुर का अभिमत है। इस प्रकार परीक्षित महाराज के इतना सारे राजाओं को कथा सुनाकर मुझे वैराग्य उत्पादन किया। ज्ञानो वैराग्य युक्तया, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जिसांग तंत्रगतं पापं जननं पुण्य कर्मणं ते दंडम और निर्मुक्ता भजन्ते मं दुर्लभ्रता, हरि भजन करने वाला व्यक्ति को सबसे पहले पापों से छुटकारा पाना चाहिए। व्यक्ति को इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी पाप करना चाहते हैं। भगवान ने भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा, इच्छा ना होते भी व्यक्ति को पाप कर्म में लिप्त होता है। तो भगवान ने क्या कहा, जिनका जो स्वभाव है उस स्वभाव का द्वारा वशीभूत होकर के जीवात्मा में कोई दोष नहीं है, जीव नित्य चिन्मय शुद्ध है, उनमें किसी प्रकार का प्रवृत्ति है नहीं है, लेकिन उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव का जो स्वभाव इस माइक जगत में आने से पहले अनादि बहिर्मुख, कोई हिस्ट्री नहीं इसका, क्योंकि माइक जगत में काल का सृजित होता है भूत भविष्य वर्तमान। ये माइक जगत और अप्राकृत जगत का बीच में काल का कोई स्थिति नहीं है, इसलिए कहते हैं अनादि बहिर्मुख। इसलिए कहा गया है और उस समय उनका स्वभाव और स्वभाव का वशीभूत होकर के जीव ये पाप पुण्य कर्म में लिप्त होता है। इसलिए जीव निंदा नहीं करना चाहिए, जीव का तारतम्य हिसाब से निंदा का भी तारतम्य होता है। संकुचित मुकुचित विकचित पूर्ण विकचित ये जीव का स्तर है और उस जीव का जिस जीव का जैसे तारतम्य है उसी तारतम्य हिसाब में जीवो निंदा में अपराध भी होता है। इसलिए कहते हैं जीविंसन त्याग करना चाहिए। व्यक्ति में दोष नहीं है, व्यक्ति के स्वभाव में दोष है और उस स्वभाव को सुधारने के लिए कृष्ण कथा का आचार्य लोग प्रचार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का कथा जितना हम श्रवण कीर्तन करेंगे उतना ही हमारा हिजगत और मौल दूरीभूत होगा। शास्त्र कहते हैं नाम संकीर्तनों करो परम उपाय, आपको कुछ करने का जरूरी नहीं है। नवविधा भक्ति नाम होते हाय, ये नव प्रकार जो भक्ति है नवविधा वो एकमात्र नाम से होता है, दूसरा किसी वस्तु का सहारा लेने का कोई आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति एकमात्र नामाश्रय व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, उससे ऊपर कोई नहीं है। जो नाम को सर्वश्रेष्ठ तत्व समझ करके नाम का एकांत आश्रयभूत है उससे श्रेष्ठ महाभागवत शिरोमणि इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? नाम का ही कीर्तन करना चाहिए, नाम का ही श्रवण करना चाहिए, नाम का ही शरण करना चाहिए। कैसे संभव है? नाम करो, नाम को उच्च स्तर में जप करो, कीर्तन हो गया, किसी के पास जाने का हमारा कोई आवश्यक नहीं है। उस कीर्तन को श्रवण करो कान से, तो श्रवण और कीर्तन दोनों हो गया। उसी नाम को शरण करो जिहा से, श्रवण कीर्तन शरण, बाकी जितना छह प्रकार है वो तीनों का अनुगत्य में चलता है। प्रथम नाम न श्रवण कर्तव्य, नाम को सुनना अति आवश्यक है। किससे नाम सुनेंगे हम? अपराध रहित तो व्यक्ति से नाम सुनना चाहिए। जिस व्यक्ति में अपराध है उससे नाम सुनने से क्या होगा? आप भी अपराध युक्त तो नाम का ही उच्चारण करोगे। इसलिए प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित ने कहा है, नामाक्षर बाहिराय बठे शुद्ध नाम नहीं है। हम सोचते हैं हम तो नाम जप कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध नाम का जप होता है कि नहीं होता ये कौन जानता है? क्योंकि अगर नाम कीर्तन अगर शुद्ध भाव में होगा तो विषय वैराग्य ऑटोमेटिकली होगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा हमारा वैराग्य आ जाए, कोई जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य अगर उदित हो तो रास्ता का लाइट ऑटोमेटिकली बंद कर देता है गवर्नमेंट, अब लाइट का जरूरी नहीं है। लाइट चालू रहता है क्या रोड में? नहीं रहता है। सूर्य अस्त होता है 1 घंटे बाद लाइट चालू हो जाता है, क्यों? रात को दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य उदय है तुम हो लो नाश। एक बार नाम सूर्य अगर चित्तांगन में उदित हो जाता है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली विषय वैराग्य हो जाएगा। आपको वैराग्य के लिए किसी प्रकार का प्रयास करने का कोई आवश्यक नहीं है, कुछ उपदेश का भी आवश्यक नहीं है। तो हमारे लिए पहला क्या कर्तव्य है? भगवान का नाम को सुष्टु भाव में उच्चारण करने का। ज्यादा माला के पीछे भागने का भी आवश्यक नहीं है। जब 64 माला करेंगे, 65 माला करेंगे, 32 माला करेंगे, आवश्यक नहीं है। जितना करते हो 4 माला भी अगर जप करते हैं तो 4 माला को भी स्पष्ट उच्चारण, नहीं तो क्या होगा? कभी राम भागेगा, कभी हरि भागेगा, कभी कृष्ण भागेगा। हरि इधर बैठा हुआ है तो कोई ना कोई भागते रहेगा। अब अगर अपना माइंड को कंट्रोल करो और अपना माइंड को कंट्रोल करके उस नाम का उच्चारण स्पष्ट बोलो और स्पष्ट अपना कर्ण में श्रवण करो, 2-4 दिन बाद देखोगे आपका नाम में निष्ठा हो गया। ज्यादा नहीं लगेगा आपको, 1 महीना नहीं लगेगा, आराम से नाम में आपका निष्ठा हो रहा है। आपका चित्त, आपका आप क्या बोलते कर्ण और आपका मन, तीनों उस नाम में चलता है। आज धीरे धीरे जब इसका एकदम गाढ़ा हो जाएगा तो भाव राज्य में आ जाओगे। जिस दिन भाव राज्य में आओगे उस दिन पतन नहीं होगा। जब तक भाव राज्य में नहीं आते तब तक पतन का चांस बना रहता है। तो साधन का सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है? हरिनाम। महापुरुष ज्यादा मगजमारी में नहीं गया, बोले कोली हो तो जी, इसको ज्यादा कुछ बोलेंगे तो कुछ कर भी नहीं सकता है, और महाप्रभु ने ज्यादा कुछ किया भी नहीं। उन्होंने गदाधर पंडित भागवत पढ़ते थे, उनका पास जाके सुनते थे बस, और बाकी नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने से समस्त वेद पाठ शास्त्र जितना भी ब्रह्मांड में जितना शास्त्र है सब पाठ हो गया। ये नाम संकीर्तन का फायदा है। इसलिए महाप्रभु क्या दुर्दैव मृदुसंग मिहाज अनुनानुराग, हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग शास्त्रों का पीछे भागते चलते हैं। तो हमें ज्यादा ज्ञान चाहिए, ज्ञान आहरण करना चाहिए, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान ही बनेंगे। आचार्य भक्तिवन ठाकुर जो आचार्य लोग है उन्होंने सिखाया समझाया हमें कैसे क्या करना चाहिए। अगर हम नामों पर ज्यादा बोल दे तो हमारा सिद्धि और गलत, नाम ही अपना रूप दिखाएगा, नाम ही अपना गुण दिखाएगा, नाम ही अपना लीला दिखाएगा, नाम ही अपना परिकर वैशिष्ट दिखाएगा, नाम ही अपना अपना जो स्वरूप है उसको प्रकटित करेगा। और क्या चाहिए। और इस नाम लेने के लिए कोई समय नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां नाम नहीं ले सकते हो, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं जहां पर आप नाम नहीं ले सकते हो, ऐसा कोई देश नहीं, काल नहीं, पात्र नहीं जो नाम उच्चारण नहीं किया जा सकता है। बाकी सब में अपेक्षिक वस्तु है, नाम निरपेक्ष वस्तु है। नाम का इतना महत्व, श्रीमद् भागवत क्या है, नाम शास्त्र है, भगवान का नाम में भरा पड़ा हुआ है, इसलिए भगवान का नाम में इतना जोर दिया। जब व्यक्ति को साधन करना तो नाम साधन, नाम साधन अकेला भी कर सकते हो, बहु लोग मिलकर भी कर सकते हो, हम जितना मंदिर में बैठा हुआ है सब मिलकर एक साथ में नाम साधन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नाम साधन करने के लिए अलग अलग जगह में जाना पड़ेगा। हम जोर से पढ़ेंगे, ये भी जोर से पढ़ेंगे, ये भी जोर से पढ़ेंगे, तो जोर से पढ़ाई क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, मतलब कितना जोर जोर से पढ़ रहा है, क्या दिमाग है नहीं क्या, भैया पढ़ो ना, तो हम सब जोर जोर से नाम करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, कितना महत्व है नाम, सब कोई एक साथ में साधन कर सकते हैं। आज बहुत सारा चीजें बोलने के लिए तो 9 बजे तक की ज्यादा टाइम कितना तक, 11 तक बहुत लंबा हो जाएगा, कमर दुख नहीं, प्रसाद तो नहीं, कमर दुख जाएगा। ये जो भगवान का मत्स्य आदर का मत्स्य का भगवान ने प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने सुखदेव गोस्वामी मत्स्य लीला का वर्णन कर प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्म परमात्मा होरी, ये तीनों वस्तु को अगर अनात्म पदार्थ हम समझते हैं तो क्या होगा, अमंगल होगा। राजा सत्यव्रत क्या सोचा था, ये मत्स्य अमंगल वस्तु है, अशुचि वस्तु है, घृण्य वस्तु है, लेकिन परमात्मा विष्णु घृण्य नहीं है। उन्होंने जिस किसी रूप में क्यों ना आए, सदा सर्वदा अपना अप्राकृत स्वरूप में विराजित रहते हैं, सत्यवत राजा को ज्ञान नहीं था। उन्हें रोज कृतमाला में अपना स्नान करते थे, तर्पण करते थे, उस दिन वैसा ही किया, और उन्हें तर्पण के लिए जैसे हाथ में पानी आया तो उसमें से मछली आ गया, जिसको उसको घृणा हुआ, जैसे घृणा हुआ मछली को छोड़ दिया, ऐसा नीचे छोड़ दिया, मछली गिर गया, बोला आप निर्दय हो, आपका दयाबल का कोई वस्तु नहीं है, आप ऊपर से मुझे गिरा दिया। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप गोद में प्रहलाद महाराज बैठे हुए थे, जब विष्णु भक्ति सुना तो उठाकर पटक दिया, एक सेकंड नहीं उठाकर पटक दिया, उनका हाथ में मुझसे आया, ऐसा लिया, ऊपर उठाया, देखा मुझे छोड़ दिया, तो मतलब क्या उठाकर पटक दिया हुआ ना, बोलता आप राजा हो कि निर्दयी हो। राजा का कर्तव्य क्या है, समस्त जीवों में समभाव रखना चाहिए, दया दिखाना चाहिए, और आपने हमको फेंक दिया, ऊपर से पटक दिया, फिर भी राजा ज्ञान ने मछलियों के बात कर रहा है, मछली को भी बात कर सकता है क्या, लेकिन जिसका हृदय में भक्ति है ना वो पशु भी बात कर सकता है। जैसे गजेंद्र का स्तव हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, ब्रजेंद्र मक्ष गजेंद्र ने हाथी ने स्तव किया, सुंदर श्लोक बोला हाथी, असंभव व्यापार, एक हाथी संस्कृत श्लोक बोल रहा है, तो भक्ति क्या नहीं कर सकता है, भक्ति एक थर्ड क्लास जीव को भी अपना स्तुति पाठ करा सकता है। भक्ति रेणैव नयति, भक्ति रेणैव दर्शयति, भक्ति देवो भूयसी, भक्ति का प्रशंसा करना चाहिए, भक्ति भगवान के पास ले जाता है, और भक्ति आद्र भावयत्री, जिसका हृदय में भक्ति हुआ है वो कोमल व्यक्ति है, वो कभी डेंजर नहीं होगा, वो आद्र भावयत्री सदा सर्वदा नम्र भाव में रहेगा। बोला आप राजा हो कि दूसरा कुछ है, बोले क्या हो गया, आपने मुझे पटक क्यों दिया है, अभी यहां पर आप छोड़ के जा रहे हो, अगर कोई मुझे खा लेगा तो मुझे रक्षा करना आपका कर्तव्य है, रक्षा करो मुझे, राजा ने उसको उठा के लाके कमंडल में डाल दिया। भगवान विष्णु अपना बृहत रूप, विष्णु शब्द का अर्थ क्या है, बृहत, अनु से भी अनु, बृहत से भी बृहत, ये विष्णु तत्व है। विष्णु अपना बृहत्व दिखाया, आ बृहत्व दिखा करके क्या किया, जिस जिस जगह में राजा ने उसको रखने किया उस पर काम पड़ने लगा। आप राज का जो मनोयोग दे रहे हैं, हम आपका घर में बैठा हूं, हमारे को ध्यान तो दिया करो। अगर आप हमारे को ध्यान नहीं दोगे तो आप मुझे बैठाया क्यों, लाया क्यों इधर, हमारा सुख सुविधा देखना आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए जिस जिस व्यक्ति ने घर में ड्यूटी रखा, भगवान को रखा है, उनका कर्तव्य बनता है उसका ध्यान रखा करे, नहीं तो सत्यवत मनोहर मछली अवतर कैसे बोल रहे हैं। आप मुझे घर में लाए हो, हमको देखभाल करना आपका कर्तव्य नहीं है क्या, आप सदा सर्वदा विषय कार्य मग्न रहोगे तो हमारा हाल क्या होगा, कितना तकलीफ देखो ना, इसमें हम घूम नहीं पाता, फिर नहीं पाता है, पार्टी नहीं खा पाता है, ऐसा हाल करके रखा आपने। राजा सत्यवत उस मछली पर ध्यान देने लगा, जहां रखा वही बड़ा हो रहा है, लास्ट में समुद्र में रखा, बोला आप कौन है, ऐसा हमारा कैसे हो गया, आप यहां से लेके वहां रखा, आप इतना एक दिन का अंदर आप इतना विरोध स्वरूप ले लिया। बोला मैं भगवान हूं कि जब तक अपना स्वरूप को परिचय नहीं देता है तो भगवान को साधारण व्यक्ति जान नहीं सकता है। सही तो ईश्वर तत्व तो जानी बारे पारे, वही व्यक्ति ईश्वर तत्व तो को समझ सकता है जिसका ईश्वरेर कृपारेर कृपालेर है तो जहारे। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य महापुरुष संबंध में वार्तालाप हो रहा है, सार्वभौम किसी तरफ से महापुरुष को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, महापुरुष होंगे तो। गोपीनाथ आचार्य कहा ईश्वर तत्व जाने वाले तारे ईश्वरेर कृपालेश है तो जहारे, भगवान को ही व्यक्ति समझ सकता है, भगवान का कृपा जिस पर होगा। जिस दिन तुम पर भी भगवान का कृपा होगा तुम उस दिन कहोगे ये महापुरुष स्वयं भगवान है। बोला गोपीनाथ क्यों भाजा बकबक कर रहे हो, जाओ अभी, बाद में इसे विचार करेगा, अभी गोसाई को नाला के लाओ, हमारे घर में भोजन करेगा। यही सत्यव्रत का भी हाल हुई है, भगवान आप ही अपने आप को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और उनको समझा रहे क्या बोल रहे हैं, और तो विष्णु शिलाधीर गुरुसु नरमति वैष्णवेर जाति बुद्धि विष्णुर्वा वैष्णवान कलिमल मथने पादतीर्थ अंबु बुद्धि श्री विष्णुर नामनी मंत्रे सकल कुलुषे शब्द सामान्य बुद्धि विष्णु सर्वे सरेश्वर तद इतर समिधि जैश्य स्वभा नारकी। वो बदमाश व्यक्ति है कौन, अर्चो विष्णु शिलाधी, विष्णु का जो अर्चा विग्रह है उसको पाथर समझना, जैसे ठाकुर जी है ना इधर एक दारू विग्रह है और एक पत्थर विग्रह है। कोई बोलेगा ये जो डीटी बनाया इसका मार्बल सही नहीं है, ये थोड़ा डार्क है, वो भगवान को मार्बल दर्शन कर रहा है, भगवत दर्शन नहीं हो रहा उसको मार्बल दर्शन हो रहा है। आचार्य लोग बना के यहां स्थापन किया, तुम डार्क है कि व्हाइट है कि और कोई कलर है, विचार करने का अधिकार तुमने किसने दे दिया। तो क्या बोलता है, ये नारकी व्यक्ति है इसलिए इसे विचार करता है। शालग्राम शिला गोल है, टेढ़ा है, पतला है, मोटा है, लंबा है, बहुत प्रकार का है, तो उसमें पस्तर बुद्धि नहीं होना चाहिए। शिलाधीर और गुरुसु नरमती, गुरु हम जैसा तो गुरु भी तो ऐसा ही है ना, अंतर क्या है, उनका भी दो हाथ है हमारा भी दो हाथ, उसका तो चार हाथ तो नहीं है, उसको हमको ज्यादा सम्मान करना पड़ेगा।
लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु को साक्षात भगवान समझ करके पूजा करना चाहिए। थोड़ा सा भी नीचा नहीं, 1% कम नहीं। आदो गुरु पूजा, जब तक नहीं करोगे तब तक अर्चन सिद्धि नहीं होगा। तो सर्वांग में भगवान विष्णु का अर्चन करने से पहले गुरु महाराज का अर्चन करना चाहिए। ताम गोपिका विसरवे स्तनायं का शिशु सेवा अधिकारिणी गुरु निजपाद पद में दक्षं प्रदायं बजकाने श्री राधांग्री सुखने से सुखिनं सुखावदो। ये गुरु महाराज का स्तुति है। हाथ में फूल लो, अरे फूल लो करके मंत्र बोलो और गुरु महाराज का चरण में विग्रह जो है वहां डालो। फिर महाप्रभु का प्रणाम करना पड़ेगा, फिर ठाकुर जी का सेवा। डायरेक्ट ठाकुर जी का करने जाओगे ना कुछ मिलने वाला नहीं है, जीरो। ये ठाकुर जी अर्चन करना है तो प्रॉपरली अर्चन का प्रोसेस भी जानना आवश्यकता है। तो गुरु में नरबुद्धि नहीं रखना चाहिए। वैष्णव जाति बुद्धि, ये बिहार से आया, ये साउथ इंडिया से आया, वो बंगाल से आया, इसका जाति ब्राह्मण नहीं है, ये अवर जाति है, ये जो विचार प्रधान व्यक्ति है वो नारकी है। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं कर रहा, सब वैष्णव, सब वैष्णव है। ये विचार कभी नहीं करना चाहिए जो फलाना जगह से फलाना है, फलाना फलाना फलाना। हमारे यहाँ बहुत सारे का मतवाद भी है, वो कहता है खाने के लिए नहीं मिला मंदिर आ गया। हम भी सुने ऐसा नहीं, हमने हम सुने इसलिए तो बोल रहा हूँ। जिन लोगों को खाना पीना कुछ मिला नहीं मंदिर में आ गया, खाने के लिए आ गया। हम बोलते तो आप लोग भी आके दिखाओ ना, क्या तो क्या तकलीफ है, हमारे साथ आप भी रहो और खाओ खिचड़ी, हम कितना खाते हैं आप भी खाओ, कितना खा सकते देखते हैं। हम वो नहीं करेंगे, हम विचार करेंगे। विचार करे व्यक्ति सावधान रहना चाहिए, इसे विचार मत क्या करो क्योंकि आप भी नरक में जाओगे। और विष्णु वैष्णवानां कलिमलम अथने पादतीर्थे अम्बु बुद्धि, शालग्राम शिला का नाना हुआ पानी जिसको हम चरणामृत कहते हैं उसको पावर क्या जानते हैं? शास्त्र उसका पावर क्षमता बोल के समाप्त नहीं कर पाता है, तो हम क्या बोलेंगे उसका? एक बार एक व्यक्ति सेठ जी कुछ दिन वृंदावन में थे, और वृंदावन में रहने के बाद गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा किया और वहां पर बैठा, और जाने से गिरिराज का शिला लेके जा रहे थे। उस गिरिराज के बारे में कोई महत्व ज्ञान नहीं था, तो कुछ दूर जाने के बाद एक राक्षस को उनको खाने के लिए आया, तो उन्होंने अपना बचाव करने के लिए गिरिराज शिला को लेकर दे मारा उसको। जैसा उसका बॉडी में गिरिराज शिला परस हुआ, वैसा वो राक्षस बॉडी को ताक करके अपरा के बपू हो गया उसको। बोला महात्मा आपने मुझ पर बहुत दया किया जब आपने गिरिराज का परस करा दिया, आपने अभिशप्त जीवन से मुक्त हो गया। ये गिरिराज शिला है, जिस जगह में शालग्राम शिला विराजित है उसका चार जोजोन मतलब कितना हो गया 32 किलोमीटर, 32 माइल एरिया में कोई व्यक्ति मरेगा तो भगवत धाम जाएगा। अभी सोचो क्या शालग्राम शिला है। आज जो व्यक्ति शालग्राम को गला में बांध के घूमता पूरा ब्रह्मांड भरिक्रमा हो जाता है उसका, वो कोई तीर्थ जाने का जरूरत नहीं है। शालग्राम गला में बांधकर घूमते रहो, चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है। आपका क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड जितना आप पाव लगाओगे आगे उतना ब्रह्मांड भ्रमण हो रहा है आपका। ये है इसमें। और क्या बोलता है, पादुक कोलीमला मथने वैष्णवेर पदधूलि वैष्णव पद जल वैष्णवेर भुक्ता से तीन साधनेर बल। वैष्णव का चरण रेणु, वैष्णव का चरण धो तो जल, और वैष्णव का उच्छिष्ट, ये साधन का तीन सबसे बड़ा संपत्ति है। फिर हम बोलेंगे काल से जितना भी डस्टबिन में सब फेंकते हम खाते रहेंगे हो जाएगा? वैष्णव बनना पड़ेगा, আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হব আমি, প্রতিষ্ঠাসা আসি হৃদয় দূষরে হইব নিরয় গামী। সত্যি আম বৈষ্ণব এ বহুদিন হো গিয়া স্কুল মে 20-25 সাল হো গিয়া, আমার সে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কই নেই জিসে আমার আয়, বৈষ্ণব কা বভি নেই হে, সমস্ত বৈষ্ণব অবৈষ্ণব গুণাবলী মে ভূষিত হে, ফির কোই আমার আকার ঝুঁকা খায় ও বৈষ্ণব বন যায়গা। বৈষ্ণব হও সর্বমতে, বৈষ্ণব কা ক্রিয়াকলাপ কেসে রেতে হ্যাঁ, যে আমারা কই ভি কার্যকে দ্বারা ভগবান রুষ্ট না হোক কিছুই বৈষ্ণব, হাম এইসা কর্ম নেই করেনগে জিস কর্মকে দ্বারা ভগবান রুষ্ট হো যায়। জিসে কে তেসাং তন্তগত পাপং, ও পাপ কার্য কর নেই সকতা হে, উসকো মালুম হে আগার হাম কুছ পাপ করে তো ভগবান রুষ্ট হো যায়গা। সতী স্ত্রী পতি কা আজ্ঞা কা অবহেলনা করতে ক্যা বা অপ্রিয় কার্য করতে কবি আমলো দেখা থা, ও কুষ্ঠি বিপ্র কাজ পত্নী থা যে কুষ্ঠি বিপ্র বলে আমি বৈশ্যা কা সাথ সঙ্গ করানা বলে ঠিক হ্যাঁ মানে উসকে নিয়ে কোশিশ করুঙ্গা, আর যা কেউ বৈশ্যা কা সেবা করনে লাগা আপনা পতি কো খুশ করনে কে লিয়ে, ইস প্রকার ভগবান কো খুশ করনে কে লিয়ে আমি ভগবান কা প্রিয় কার্য কা সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করনা চাই, জিস কার্য কে দ্বারা ভগবান প্রসন্ন তবে তো বৈষ্ণব হ্যাঁ। আর আগে ক্যা কে শ্রীবিষ্ণুর নাম নিয়ে মন্ত্রে সকল কলুষে শব্দ সামান্য বুদ্ধি, কৃষ্ণ নাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ, কৃষ্ণ মন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন, কৃষ্ণ মন্ত্র যো আমলোক কো গায়ত্রী মে দিয়া গিয়া হে উসসে ক্যা হোগা সংসার ক্ষয় হোগা, যো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উসসে ক্যা হোগা কৃষ্ণ কা চরণ লাভ হোগা। তো ক্যা হোগা মন্ত্র সে ভি নাম শ্রেষ্ঠ হে, যে মন্ত্র আমি প্রদান কিয়া গিয়া হুসে ভি নাম সর্বশ্রেষ্ঠ হে, মন্ত্র জপ করেন কে টাইম টেবিল কাজ জরুরি হতা হে, নাম জপ কে টাইম টেবিল কাজ জরুরি নেই হে, মন্ত্র সূচি ও সূচি কা ভেদ করতা হে, শুদ্ধ অশুদ্ধ অবস্থা দেখতা হে, নাম নেই দেখতা হে, ইসলিয়ে মন্ত্র সে নাম শ্রেষ্ঠ। সেই ইসমে যে সামান্য বুদ্ধি করতে হ্যাঁ, আর শ্রী বিষ্ণু সর্ব ঈশ্বর ঈশ্বর হ্যাঁ, আর উনকো যে সামান্য দেবতা কাজ সমান গান করতে হয় সমাধি স নারকী, যে বিগ্রহ কো পাথর সমঝনা নরক জানে কা রাস্তা হই। মৎস্যদেব যো হ্যায় যুগুপ্স রতি কা বিষয় হ্যায়, যুগুপ্স রতি উনমে সামগ্রী সম্মেলন করনে সে বিভৎস রতি কা উৎপন্ন হতা হে, 33 বেবিচার ভাব হে জিসকো অনুভব কহতে হ্যাঁ, আর স্থায়ী ভাব পঞ্চ হে, এই পঞ্চ স্থায়ী ভাব কা সাথ যো 33 বেবিচারী বা অনুভব যাব সম্মিলন হতা হে তো রস কা সমুদ্র মে উর্মি উঠতা হে, যাব সমুদ্র মে সাইক্লোন হো বা টাইফুন ইত্যাদি ইত্যাদি হতা না কুছ তো ক্যা হতা সমুদ্র মে ঢেউ উঠতা হে, উসি প্রকার রস রূপ সমুদ্র যে স্থায়ী পঞ্চ ভাব হে, ও স্থায়ী পঞ্চ ভাব মে যে 33 অনুভব সঞ্চরণ করতা হে তো রস সমুদ্র মে ঢেউ উঠতা হে, আর ঢেউ ক্যা করতা হে হসতি রোত্তি গায়ান উন্মত্তবাদ নিত্যতি কচিদ, ভক্ত কবি হাসতা হে কবি রোতা হে কবি নাচতা হে কবি গাতা হে, এ নাম জপ কা প্রভাব। তো এই দ্বাদশ রস মে হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ রুদ্র ভয়ানক আর বিভৎস, এ সাত গৌণ রসে শান্ত দাস্য সৈক্য বাৎসল্য মধুর্য, এ পঞ্চ মুখ্য রসে साधन भक्ति में श्रद्धा, भाव भक्ति में रति और प्रेम भक्ति में रस। शतांग प्रसंगात ममवीर्य संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तज्जे सनातन अपवर्ग वतर्मणि श्रद्धा भक्ति रति क्रम अनुस्तुति है। जाह भागवत पड़ गया वैष्णवेर स्थाने, वैष्णव लोग भागवत को किस जायगा में किसका समन्वय समझा देते हैं। वैष्णवी भागवत जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। उन्हें समझाता है साधन में श्रद्धा होना चाहिए। साधन में अगर श्रद्धा नहीं है तो साधन नहीं होगा। भाव होगा तो रोती अपना आप होगा। रोती मीन्स अव्यर्थ कालत्व। जिस व्यक्ति का भाव हुआ है वो अव्यर्थ कालत्व 24 घंटा का एक भी सेकेंड वो फालतू नहीं करेगा, कोई फालतू बात नहीं करेगा। तो समझ लेना चाहिए ये भावुक व्यक्ति है, भाव स्टेज में है। और प्रेमी भक्त रस आस्वादन करते रहेगा। सब जायगा में कृष्ण का लीलाई दर्शन होगा उसका, इसलिए कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी नृत्य करेगा। कि जब कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, जिस व्यक्ति ने भागवत पढ़ लिया है उनमें अभक्त व जड़ रस नहीं रह सकता है। कीर्तन करने के द्वारा ही कीर्तन श्रवण होता है। आज कीर्तन ना सुन के कीर्तन करना वो मूर्खामूह है। इसलिए आजकल बहुत सारे भागवत वक्ता हो गया है वो भागवत श्रवण करता ही नहीं है और सीधा भागवत बोलने जा रहा है, इसलिए उसका आचरण में डिफरेंस हो जाता है। जब तक ये सब रहेगा तब तक उनका मुख से भागवत नहीं सुनना अच्छा है। क्योंकि यहां कहते हैं बेच्चा का मुंह से हरि कीर्तन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अगर उससे अगर हरि कीर्तन सुना जाए तो खुद को भी बेच्चा बनना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। मैं तो बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारा कहने का ताकत किधर है। भागवत पाठ करके जीविका अर्जन, ये कुछ पैसा मिल जाएगा, हमारा कुछ बैंक बैलेंस हो जाएगा, वो सालग्राम को दे करके बादाम तोड़ना। प्रयोजन क्या होता है, अपना इंद्रियों तो स्वान लोग बहावा करेगा, लेकिन जो व्यक्ति भागवत पाठ करता है उनका एकमात्र कृत्य क्या है, कृष्ण सेवा, दूसरा कोई कृत्य उसका नहीं है। इतना सब उपदेश भगवान मत्स्यदेव ने सत्यव्रत राजा को दे दिया। सत्यव्रत राजा समस्त ऋषि बिंदु का साथ में ये सब श्रवण किया। आज वराहदेव का आविर्भाव तिथि है, भगवान वराहदेव सुअर, सुकोर बोलता है ना, जिसको मुसलमान लोग क्या बोलता है, हराम, हरामेर बच्चा, सुअरेर बच्चा, गाली देता है ना, सुअर का बच्चा, मतलब क्या है, सुअर सदा सर्वदा गंदगी में अच्छा पसंद करते हैं। तो तुम भी ऐसा ही हो, इसी बोलता है सुअरेर बच्चा। लेकिन भगवान क्या किया, बड़ा रूप लेकर आविर्भाव हुआ, महाबड़ा है। बसती दसने शिखरे धरणी तब लग्ना, शशिनी कलंक कलेव निभग्ना, केशव धीत सुकर रूप, जय जगत दीश हरे। बसती दसने शिखरे धरणी तब लग्ना, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड धोरणी कितना बड़ा है, जिसका व्यायाम 50 कोटि योजन है। भगवान बराहदेव कहां रखा अपना दर्शन, दांत में रख दिया, और आपका दांत ऐसा होता है, उसको ऊपर धोरणी को बैठाए, वहां पर पिक्चर है वो देखो सुना में, ऐसा करके भगवान बराहदेव शोषिनी कलंक कलेव निमग्ना, कितना सुंदर है शोषिनी कलंक, उपमा कैसे दिए देखो कवि लोग, चंद्रमा में कलंक जिस प्रकार शोभायमान है, निष्कलंक गौर सुंदर दिल दर्शन सकलंक चंद्रार किवा प्रयोजन। महाप्रभु आविर्भाव हुआ था तो चांद ने अपने आप को ढांक लिया, लोग ने क्या बोला ग्रहण हुआ ग्रहण, वास्तव में क्या था लोग समझा ग्रहण हो गया ग्रहण, लेकिन जब सकलंक गौरचंद्र दिलो दर्शन, जब महाप्रभु गौरचंद्र क्या बोलते गौर सुंदर गौरचंद्र द्विजकुलचंद्र, जब चंद्र का आविर्भाव हुआ सगौरव सकलंक चंद्र गौर सुंदर का जब आविर्भाव हुआ तो कलंकित चंद्र अपना आपको ढांक लिया, बोले इस समय हमारा दर्शन नहीं होना अच्छा नहीं है। जब रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ तो हनुमान ने सूरज को खा गया, सूर्य वंश में स्वयं सूर्य आविर्भूत हुआ है तो तुम सूर्यों के क्या करो, तुमको खा जाता हूं, इसलिए हनुमान ने खा गया था। चंद्रमा ने क्या किया अपना आपको ढांक लिया, दो कार्य किया, एक कार्य गौर सुंदर का प्रेम नाम सब लोग हरिनाम करने लगा ग्रहण, और दूसरा चंद्र ने अपने आपको शर्म के मारे ढांक लिया, चलो अभी इसमें हमें आविर्भाव की जरूरत नहीं है, हमें रुक जाना चाहिए, महाप्रभु का प्रकाश का समय में हम अपने आपको दर्शन क्यों दे, अगर मैं अपने आपको दर्शन दू तो लोग मुझे देखेगा महाप्रभु का दर्शन नहीं करेगा तो हम अपराधी बन जाएंगे। क्या पूर्णिमा का रात्रि है लोग यही कहेगा ना, कोई कहेगा जो गौर सुंदर का आविर्भाव हुआ तो व्यक्ति देखो अभी इसमें विचार करो थोड़ा, व्यक्ति को कभी भी अपराध उत्पन्न होने का चांसेस नहीं देना चाहिए, ये हमारा वजह से कोई अपराध करे इस प्रकार स्थिति नहीं होना चाहिए कोई भी, तो हमारा आचरण कैसे होना चाहिए शुद्ध निर्मल, जिस आचरण देख के हमारा प्रशंसा करे न कि हमारा निंदा करे, लोग तो समझेगा नहीं, तो वैष्णव का आचरण निष्कलंक होना चाहिए, जिससे लोग उसका चर्चा ना करे, लोग उसका चर्चा अगर करेगा तो क्या होगा उसको अपराध होगा, कैसे अपी के तो सुदूराचार भजते मामन्य भाग साधु एवं समन्त सम्यक व्यवस्थित है सब, जो व्यक्ति भजन राज्य में प्रविष्ट हुआ है वो भजन करेगा, उस समय के लिए स्वभाववश उसका किसी प्रकार का कोई तकलीफ हो सकता है, किसी कारणवश उनका कोई दोष दर्शन हो सकता है, तो वो दोष ज्यादा दिन नहीं रहेगा, लेकिन उसका दोष देख के अगर हम उसको निंदा करें तो हम अपराधी बन जाएंगे, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हमें इस प्रकार दोष को देखवा नहीं करना चाहिए, जिससे अपर व्यक्ति हमारा दोष का दर्शन करे। जिस प्रकार ने चंद्रमा ने क्या किया आपने आपको ढांक लिया गौर सुंदर का अवमानना ना किया करे, सकलंक चंद्रियावास किवा प्रयोजन, भगवान बराहदेव बराह तीन प्रकार का है, एक श्वेत बराह, एक रक्त बराह, एक नीली बराह, तीन बराह, नीली बराह मनुष्य जैसे उसका मुख मनुष्य का है, इसलिए कहते हैं नी बड़ा हो। मथुरा में जाओगे दो बड़ा का दर्शन हो जाएगा, खेत बड़ा हो और आदि बड़ा, आदि बड़ा हो और सुख बड़ा हो। वो जो मूर्तियां हैं, ये मूर्ति जो भगवान आविर्भूत हुए थे ना ब्रह्मा का नाक से, उसने भगवान ने कृपा करके उनको मूर्ति प्रदान किया था ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा ने उसका अर्चन किया, ब्रह्मा से रावण लेके आ गया उस बराह मूर्ति का, रावण से रामचंद्र लेके आया, रामचंद्र शत्रुघ्न को दिया। आज शत्रुघ्न जाकर के मथुरा में उसको स्थापन कर, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं आगे। बड़ा मूर्ति कब का है कोई नहीं बोल सकता है, ब्रह्मा का 51 साल बाद में जो सृष्टि लीला कार्य शुरुआत हुआ था उस समय को बड़ा मूर्ति है। स्वयं प्रकटित विग्रह, अशेष पाप नाशक, कल्याण गुणों वारिधि, भक्ति पोषक बुरादेव का मूर्ति है। उनका दर्शन करो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, भगवत भक्ति हो गया, हो गया भक्ति, भक्ति आपका हो गया। श्रवणे मथुरा, नयने मथुरा, बदने मथुरा, मथुरा मधुरा, दिनों में एकं निवास है ना हरि भक्ति बुझायते। इस मथुरा धाम में एक बार भी एक दिन कोई निवास करता है तो हरि भक्ति लाभ हो जाता है। अगर निवास नहीं करके मथुरा मथुरा बोलो ना, क्या तो मथुरा मथुरा मथुरा, बस मथुरा हो गया ना, हाँ क्या चाहिए। श्रवण मथुरा मथुरा का सुनो, मथुरा का कीर्तन करो, मधुर मथुरा, क्योंकि भगवान बड़ादेव वहां पर निवासित है। अजो का जन्म लिया मथुरा में हुआ है, वैकुंठ जोड़ी तो बड़ा मधुपुरी तत्रापि राक्षस, वैकुंठ भी श्रेष्ठ है मधुपुरी, वैकुंठ श्रेष्ठ है साक्षात मधुपुरी, वैकुंठ श्रेष्ठ है साक्षात मधुपुरी। आराना परिक्रमा सचिमा का घर, जोगपीठ, जन्मस्थान जिसको बोलते हैं वार प्लेस, साक्षात मधुपुरी है वो, वैकुंठ श्रेष्ठ है साक्षात मधुपुरी। तो भगवान बड़ादेव नित्य स्थिति मथुरा में, क्योंकि तो घूम फिर के मथुरा में आया ना, सत्य लोक में रहा, रावण के पास श्रीलंका में कुछ दिन रहा, अयोध्या में कुछ दिन रहा, नित्य स्थिति मथुरा, वहां से नहीं जा रहा अभी। चौदह कल्प तक रावण ने उसका आराधना किया, तो वो जो कल्प सोचो इतना लंबा जो होगा, लेकिन रावण का एक ही दोष था, सर्वस्तर में नरबुद्धि हो गया था उसका, भगवान रामचंद्र में नरबुद्धि हो गया था, इसलिए रावण का यह हाल हुआ। यदि गुरु में नरमति बोलते हैं ना, वो तो नरबुद्धि अगर हो गया तो हमारा जैसे रावण जैसे हाल हो जाएगा, ये शास्त्र मना करते हैं गुरु में नरबुद्धि नहीं रखना चाहिए। तो बड़ादेव भगवान नासा से उत्पन्न हुए थे, ये भैरवी से भयानक रस का प्रकाश, जब हिरण्य अक्ष, हिरण्य शब्द का अर्थ क्या है सुवर्ण, अक्ष शब्द का अर्थ क्या है जो संचय करता है, जो सोना रखता है वो हिरण्यक्ष है, जो ज्यादा सोना खरीद करके अपना पास रखता है वो हिरण्यक्ष है, शास्त्रों का उत्पत्ति का तो अर्थ में उसको बध करने में बड़ादेव के आना पड़ेगा। तो अत्याहार जिसको कहते हैं, अत्याहार अत्याहार ज्यादा संचय करने वाला वो हिरण्यक्ष है, तो सोचता हमारा बाद हमारा बेटा क्या खाएगा, हमारा पोता क्या खाएगा, उसका पोता क्या खाएगा, वो हिरण्यक ऑलरेडी। इसलिए कहते इत्याहार प्रयास प्रजल प्रियम ग्रह जनसंग लोलन चो फल विभक्ति विनस्पति नष्ट हो जाता है। जितना अपना आप जरूरी है उतना ठीक है, बस संचय ज्यादा करोगे तो विषय के पीछे भागना पड़ेगा, संचय अगर नहीं रहोगे तो विषय के लिए चाहे हरिभजन नहीं होगा। अगर आपके पास पर्याप्त तो अर्थ नहीं है तो भजन भी नहीं कर सकते हो, बोले कैसे संभव है? क्योंकि वैराग्य तागी यार गृहस्थ दो है, तागी के लिए संचय करना एकदम निषेध है। तागी शाम को क्या खाएगा उसको भी नहीं सोचना चाहिए, अगर तागी संचय करता है वो तागी नहीं है, वो गृहस्थ से भी गया गुजरा है, वो ताग धर्म नहीं रहता है। तो तागी को संचय नहीं करना चाहिए, गृहस्थ संचय करे कितना जितना जरूरी है। महापुरुष क्या बोला, गृहस्थ हो यदि ना करो संचय कैमन है तुम्हार कुटुंब भरम। गृहस्थ होकर थोड़ा संचय नहीं करोगे तो आज शादी है, कल ब्याह है, कल और कुछ है, इस पर निर्वाह कैसे होगा? गृहस्थ को संचय करना आदेश महापुरुष दिया, लेकिन जावत अर्थ निर्वाह जितना जरूरी भगवान का भजन पूजन करने के लिए उतना संचय करना है, ज्यादा नहीं। भगवान का नाम लेकर के विषय नहीं बनना चाहिए, मंदिर को गृहस्थ नहीं बनाना चाहिए, गृहस्थ को मंदिर बनाना चाहिए। ये बोले मंदिर को हम घर बना देंगे, हो गया छुट्टी मंदिर का, बात लग जाएगा। घर का मंदिर बनाया करो, मंदिर को घर बनाने की कोशिश कभी नहीं होना चाहिए। यही भगवान बराहदेव भयानक रथ हिरण्यक को देख के डर गए, ये क्या है रे बाबा। भगवान बराहदेव सबसे पहले ब्रह्मा का जब स्वयंभू मनुआ शतरूपा था उस समय आविर्भाव होकर के पहला आविर्भाव हुआ था उनका। बराहदेव दो अवतार हुआ था, एक चाक्षुष मन्वंतर में जो अभी क्या है, और एक क्या बोलते इसका स्वयंभू मन्वंतर में। तो स्वयंभू मन्वंतर में जब भगवान आविर्भाव हुआ तो द्वितीय अपना शतरूपा और स्वयंभू मनु ये दोनों को वासस्थान के लिए वो पर्वत समुद्र में पृथ्वी अंदर घुस गया था। उनको प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा, हम तो सृजन कर रहे थे, पृथ्वी तो मेरे सामने था, गया सीधा। तब भगवान आविर्भाव होकर के वो बराह मूर्ति से पृथ्वी को लाके दिया। उस समय से लेकर के भगवान बराहदेव समुद्र में रसातल में ही लीला करने लगा, बाहर नहीं आया। और जब हिरण्यक्ष जब अपना दिग्विजय करने निकला, कोई उसका पराजय नहीं कर सकता, वैकुंठ हर जाएगा गया, बोला ब्रह्म भगवान है नहीं, विष्णु नहीं है, विष्णु मर गया, विष्णु काल रात तो वहां से आके समुद्र में आके गदा मारने लगा, दुमा दुम। ब्रह्म देव क्या हो रहा है, देखो हमारा ताकत नहीं है, अभी बुढ़ा हो गया है, आप युद्ध करना चाहते हो ना तो अंदर थोड़ा जाओ और वहां पर देखो आपको मिलेगा। कब देख रहा है भगवान बराहदेव जो हिरण्यक को भरित्व को लेकर रथातल में रखा है उसको लेकर उठ रहा है। कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, चोर 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 बदमाश, थोड़ा रुक तो सही। तो भगवान ऐसा करके जब देखा तो पृथ्वी थोड़ा हिल गया, तो पृथ्वी डर गया, बोला भाई हमारा हाल क्या हो जाएगा। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, चुड़ा चिंता करने की कोई बात नहीं, भगवान उस पृथ्वी को समुद्र पर स्टे करके रखा अच्छी तरीके से और फिर उनका साथ फाइटिंग हुआ। इसमें विचार यह है कि जिस वस्तु से जिसका प्राकृत्य होता है वो उसका बाप कहलाता है, लेकिन भगवान ब्रह्मा का नाक से बराहदेव का आविर्भाव हुआ तो क्या बराहदेव का बाप है ब्रह्मा जी? लेकिन माँ यशोदा व नंद बाबा कृष्ण का बाप माँ है कि नहीं है, है ना? ये ब्रह्मा बाप नहीं हुआ। क्यों? कि ब्रह्मा में प्रीति नहीं है, नंद यशोदा में प्रीति है। नंद यशोदा का कृष्ण में प्रीति है, इसलिए संपर्क हुआ। ब्रह्मा पूज्य बुद्धि, बरादेव पूजा, तब स्तुति, जिसे ऊपर से कूदी मारा ना, जोर जो, समुद्र में भयंकर शब्द हुआ। और शब्द में ऐसा शब्द हुआ जो सब लोग का कान बंद हो गया। तब लोग ऋषि लोग सोचने लगा, पहले अंगुष्ठ बोली माना, अंगुष्ठ मतलब इतना, इसको बोलते अंगुष्ठ, इतना बढ़ा दे भाया। देखते देखते हाथी पर्वत हो गया, और पर्वत होकर के समुद्र में जो कूदी मारा तो भयंकर शब्द हुआ। ब्रह्मांड कटाह, जिसे भेद हो गया, उनको वहां रख करके हिरण्यकश्यप के साथ फाइटिंग शुरू हो गया। भगवान का लीला विलास इस जगत में, तुम काट क्यों रहे? भगवान का लीला विलास इस जगत में जीवों का साथ होते रहता है, बद्ध जीव का साथ नहीं है। भगवान कोई बद्ध जीवों का साथ लीला नहीं करते हैं। बद्ध जीव भगवान को उस लीला को दर्शन कर सकते हैं उस समय में, सब समय नहीं, उस समय जो जीव जीवित रहते हैं, मैं देखते हैं, वो जीव चाहे तो भगवान का उस लीला का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें घुस नहीं सकता है। महाप्रभु नरेंद्र में जल के लिए किया, उस नरेंद्र स्वर में बहुत सारे लोग हैं, सब स्नान कर रहे हैं, महाप्रभु अपना पार्श्व का साथ जल के लिए कर रहे हैं, उस जगह में कोई आ नहीं पा रहा है। कि भगवान का स्वरूप शक्ति है ना, वो स्वरूप शक्ति सबको बाउंड्री देकर आएगा, कोई नहीं आ सकता है। जब तक जीव मुक्त नहीं होता है, तब तक भगवान का लीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। आगे हो मुक्त हो तब हवे दास, भगवान दास उसे स्वीकार करते हैं जो मुक्त जीव होता है। सबसे पहले जीव को मुक्त होना पड़ेगा, जीव जब मुक्त होगा तभी वो भगवान का दास कहलाएगा। तो हमारा नाम का सबके पीछे क्या दिया है? दास। क्यों दिया? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण दरे करे आत्मसम, सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह कृष्ण चरण से भय। जिस दिन दीक्षा हुआ उस दिन हमारा जन्मार्जित पाप नष्ट हो गया, उस दिन हमारा शरीर चिदानंदमय हो गया, लेकिन फिर हम जो गलत कर्म कर रहे हैं वो हमारा स्वभाव है और हमें नहीं करना चाहिए। तभी दीक्षा का तात्पर्य होता है। भगवान बराहदेव हिरण्यक्ष को अभिजीत नक्षत्र में उसका वध किया और स्वर्ग में पुष्पवृष्टि हो गया। महाप्रभु बड़ा रूप धारण किया था मुरारी गुप्त का घर में, शुकर शुकर बोले महाप्रभु धाय, शिशी आदिलीला सप्त सत्रह परिच्छेद 17-18 श्लोक में होगा, बराह का रूप का वर्णन दिया गया है। महाप्रभु जानू गाड़ करके दर्शन में लोटा उठा करके पानी पिया, मुरारी गुप्त भगवान का बराह रूप का दर्शन किया। और जो कोलद्वीप है नवद्वीप में, कोलद्वीप, वो कोलद्वीप सुवर्ण विहार, वहां पर राजा कोल ने उसको भगवान का बड़ा रूप का दर्शन किया, जिसका नाम हुआ था, उसका नाम कोल, कोल शब्द का तो बृहत पर्वत, बृहत पर्वत, तो बड़ा अधिक बृहत पर्वत रूप में, बृहत ऐसा जो उनका स्वरूप था, खूब बड़ा बृहत पर्वत है, इस स्वरूप में प्रकट हुआ था, जिसको देख करके उनको आश्चर्य हो गया, उनको पूजा स्तुति किया, जिसका वजह से उसका नाम पड़ा कोलोद्वीप। भगवान का बराह की लीला श्रीमद भागवतम में किसमें है? इसमें तीसरा स्कैंटो 671 पेज है। उसमें उसको वर्णन दिया गया तीसरा स्कैंटो में। ज्यादा अगर जानकारी करना है आज उसको पढ़ो, पढ़ने से लाभ होगा, क्योंकि हर लीला का अवतार और चरित्र कथा, भगवान का अवतार चरित्र कथा सुनने से व्यक्ति का हृदय शुद्धिकरण होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी मत्स्य अवतार बोलने के बाद प्रणाम किया, ये मत्स्य हम सबको पर कृपा करे। उसी प्रकार बरहदेव भी किस प्रकार कृपा करे हमारे हमारे ऊपर, विषय संचय रूप जो स्प्रिया है, विषय संचय करने का स्प्रिया है ना सब में है, उस स्प्रिया को नष्ट करे। क्योंकि बरहदेव हिरण्यक को वध किया जो स्वर्ण इकट्ठा करता था, तो स्वर्ण मीन्स विषय है, तो विषय इकट्ठा रूप जो विषय एकत्र करने का जो हमारा प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को भगवान बरहदेव कृपा पूर्वक हमारा नष्ट कर दे, जिसे कृष्ण विषय संग्रह करने का हमारा प्रवृत्ति उन्मोचित हो। कृष्ण विषय संग्रह करने का प्रवृत्ति अगर हमारा हो तो अति उत्तम, लेकिन अपने लिए विषय संग्रह करने का प्रवृत्ति हो तो उसको बरहदेव नष्ट करे। ये बरहदेव से आज प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण बोध हो गया। मंसा कल्पतरु श्रीपाचन परिदान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हमारा जय जय क्या कर रहे हैं।